आचार्य रचित धवला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री दर्शन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें महावीर भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ है। अब ये पांचवी पुस्तक में भावानुगम हमने शुरू किया है, अंतरानुगम तो समाप्त हो गया। पृष्ठ संख्या 187 पर अभी हम आए हैं। पहले हमने निक्षेप लगाए, भाव पर निक्षेप लगाकर देखे थे, नाम निक्षेप यानी नाम भाव, स्थापना भाव, द्रव्य भाव और भाव भाव। यहाँ जो पांच भावों की चर्चा चलेगी वो नौ आगम भाव भाव निक्षेप है। अब इसमें जो छह प्रकार का कथन होगा, इसका नाम क्या है, इसका स्वामी क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं आदि आदि बातें, उसकी अभी चर्चा होगी। ये हम 187 पृष्ठ पर आ गए हैं। कल हमने ये भी बात की थी कि जीव के परिणामों को भाव कहा है, और वहां निर्जरा के भावों का उदाहरण लेके मंद और तीव्र भाव होते हैं ऐसा बताया था। उसी की बात अभी आगे चलेगी। कल हमने 10 स्थान देखे थे ना, असंख्यात गुणा निर्जरा के, क्रमशः 10 स्थान देखे थे, जैसे सम्यक्त की उत्पत्ति वाला पहला, सबसे पहला, फिर पांचवा गुणस्थान वाला यानी श्रावक, फिर विरत, अनंतानुबंधी का विसंयोजन करने वाला, दर्शन मोह का क्षपणा करने वाला, ऐसे ऐसे हमने सभी, हाँ उपशामक है यानी कषायों की उपशमना करने यानी उपशम श्रेणी वाला, फिर 11वां गुणस्थान, क्षपक श्रेणी वाला फिर 12वां गुणस्थान, और फिर जिनेन्द्र भगवान। इस तरह से हमने 10 स्थान देखे थे असंख्यात गुणा निर्जरा वाले, यानी एक से दूसरे में असंख्यात गुणा है इस तरह। अब यहां 187 पृष्ठ पर आ गए हैं। यहां शंका ऐसा लिखना चाहिए स्टार्टिंग में, क्योंकि बाद में तो समाधान किया है मगर शंका कहीं दिख नहीं रही। तो इन सूत्रोद्दिष्ट परिणामों की प्रकर्षता का नाम प्रकर्षता ने अधिकता उसकी, तीव्र भाव, और अप्रकर्षता का नाम मंद भाव है। इन्हीं परिणामों के द्वारा असंख्यात गुणश्रेणी रूप से कर्मों का झरना अथवा कर्म झरने से उत्पन्न हुए जीव के परिणामों को निर्जरा भाव कहते हैं। इसीलिए वो सी दीर्घ चाहिए, इसीलिए पांच ही जीव के भाव है, यह नियम युक्ति संगत नहीं है। शंकाकार की शंका ऐसी है, ये पांचों ही जीव के भाव है, ये नहीं बैठता युक्ति में, युक्ति से सिद्ध नहीं होता, उसका समाधान करते हैं। यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि यदि जीवादि द्रव्य से तीव्र मंद आदि भाव अभिन्न होते हैं तो उनका पांच भावों में अंतर्भाव नहीं होता है, क्योंकि वे स्वयं द्रव्य हो जाते हैं। क्या कहते हैं, यदि ये जो जीव के परिणाम है, किसी भी द्रव्य के परिणाम उस द्रव्य से अभिन्न हो जावे तो उनका पृथक अस्तित्व नहीं रहता, वो द्रव्य रूप से ही हो जाते हैं, अभिन्न ही अगर कहेंगे तो। तो यदि ये जो पांच भाव है वो जीव रूप ही यदि हो जावे तो उनका सेपरेट एग्जिस्टेंस जिसको कहते हैं, पृथक अस्तित्व नहीं रहेगा। फिर पढ़ेंगे, देखो, यदि जीवादि द्रव्य से सभी द्रव्यों में ये बात होगी, उनके अपने अपने मंद या तीव्र भाव यानी उनके परिणाम यानी उनका परिणाम अर्थात पर्याय यानी द्रव्य से उनकी जो परिणाम है वो अगर अभिन्न होते हैं तो उनका पांच भावों में अंतर्भाव नहीं होता, तो उनको ये पृथक पृथक परिणाम ऐसे हम नहीं बताते क्योंकि वे स्वयं द्रव्य हो जाते, क्योंकि द्रव्य से अभिन्न तो द्रव्य हो जाएंगे, उनका भिन्न अस्तित्व नहीं रहेगा। और यदि भेद माना जावे और वो सर्वथा ही भेद रूप ही मानेंगे तो पांचों भावों में से कोई एक होगा, क्योंकि इन पांच भावों से पृथक भूत छठा भाव नहीं पाया जाता है, कहा भी है यानी जीव अलग और ये पांच भाव अलग, ऐसा मानेंगे तो वो भी सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि इन पांच भावों से अलग कोई द्रव्य पाया नहीं जाता है, जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है, यानी पांच भाव अलग हो और उनसे जीव द्रव्य कोई पृथक हो ऐसा भी नहीं है, जीव द्रव्य के ही ये भाव है, ना ही सर्वथा अभिन्न है ना ही सर्वथा भेद रूप है।
यहाँ पर एक बात खास ध्यान रखना कि स्यादवाद के अनुसार द्रव्य और पर्याय सर्वथा अभिन्न है नहीं और सर्वथा भिन्न नहीं है, कथनचित भिन्न है और कथनचित अभिन्न है, वो अगर हम बात ध्यान में रखते हैं तो यहाँ जो बात बताई जा रही वो अपने ख्याल में आएगी। सर्वथा अभिन्न मानने से तो वो द्रव्य ही हो जाएगी और भिन्न मानने से कोई जुदा प्रकार चालू होगा। आगे
कहा भी है, अब गाथा पढ़ते ऊपर जो पांच नंबर की गाथा लिखी है, ओ दयो वसमियो खयो तहवी अखो वसमियो परिणामियो दुभावो उदयेन दुपुगलानंतु। औदयिक भाव, औपशमिक भाव, क्षायिक भाव, क्षायोपशमिक भाव और पारिणामिक भाव, ये पांच भाव होते हैं। इनमें पुद्गलों के उदय से औदयिक भाव होता है, वो पुद्गलों के हुआ है, पुद्ग करना उसको, द आधा और ग पूरा, पुद्गलों के उदय से औदयिक भाव होता है, पुद्गलों के उदय से नहीं कर्म के उदय से। हमने पहले देखा था कि यह निमित्त की भाषा है, यहाँ कर्ता कर्म संबंध नहीं बता रहे हैं, क्योंकि दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं होता, अभी ये बात चल रही है अपनी शाम को, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध उसमें हो सकता है। तो जब यहाँ उदय से होता है ऐसा कहेंगे तो वहाँ उन दोनों में निमित्त है, निमित्त नैमित्तिक संबंध, इतना ही समझना। तो क्या कहते, इनमें पुद्गलों के उदय से औदयिक भाव होता है। औदयिक ये शब्द ही उदय के, उदय का जो है उदय से उत्पन्न उसको कहते हैं औदयिक, जैसे हम कहते हैं शरीर की बीमारी उसको कहते हैं शारीरिक, और मन की हो तो उसको कहेंगे मानसिक, ये शब्द ऐसा तैयार हुआ है। वैसे उदय से क्या होता है, औदयिक उपशम से औपशमिक, क्षय से क्षायिक, ये नाम ही ऐसे तैयार हुए हैं, और क्षयोपशम जहाँ पाया जाता है वहाँ क्षायोपशमिक, और पारिणामिक किसको कहेंगे, स्वभाव है ना, वो परिणाम जीव का अपना है, वो किसी कर्म के कारण नहीं है, उसका स्वयं का स्वभाव है। अब निर्देश स्वामित्व आदि प्रसिद्ध छह अनुयोग द्वारों से भाव नामक पदार्थ का निर्णय किया जाता है। किसी पदार्थ का निर्णय करना है तो पहले में पहले उसका नाम बताएंगे, फिर वो भाव कहेंगे तो भाव किसका होता है, उसका स्वामी कौन है, उसको बताएंगे। तो ये पहले भाग में हमने ये देखे थे, ऐसे छह जो बातें हैं उन छह प्रश्न पूछेंगे और उनके उत्तर में जो बातें आएगी उस तो उस विषय संबंधी उसकी पूर्ण जानकारी उसमें मिल जाएगी। अब शंका के रूप में यहाँ प्रश्न रखेंगे और समाधान में उसका एक एक का यानी छह जो बातें हैं उनका यहाँ उत्तर देकर हमें पूरी तरह से उसका समाधान करेंगे। देखिए शंका है, भाव नाम किस वस्तु का है, तो उसका समाधान है द्रव्य के परिणाम को, यानी यहाँ परिभाषा मिलती है हमको, भाव किसे कहना, तो द्रव्य के परिणाम को अथवा पूर्वापर कोटि से, पूर्व और अपर, पूर्व ने पहले वाला और अपर ने उसके पश्चात वाला, पूर्वापर कोटि से व्यतिरिक्त वर्तमान पर्याय से उपलक्षित द्रव्य को भाव कहते हैं। या तो द्रव्य के परिणाम को भाव कहना या वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य को भाव कहना। पूर्वापर कोटि से व्यतिरिक्त ने पूर्व वाली पर्याय और आगे वाली पर्याय, इन दोनों पर्यायों को छोड़कर कौन सी रही? अभी वर्तमान ही एक रही, तो वर्तमान पर्याय से उपलक्षित ऐसा जो द्रव्य है उसी को भाव कहते हैं। यानी यहाँ द्रव्य को भी भाव कह सकते हैं और परिणाम को यानी उसके पर्याय को भी भाव कहेंगे। ये पहला प्रश्न हुआ। निर्देश आदि छह बातें हम यहाँ देखने जा रहे हैं, ये एक बात हुई। अब दूसरी बात, भाव किसके होता है, अर्थात भाव का स्वामी कौन है? ऊपर लिखा था ना निर्देश स्वामित्व, ये तत्वार सूत्र में जो है, हाँ, साधन वगैरह वगैरह अधिकरण, ये जो छह बातें हैं। किसी भी पदार्थ को जानना है तो इन छह बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये छह बातें क्रम से आएगी। ये अभी दूसरी बात चल रही है कि भाव का स्वामी कौन है। समाधान, छहों द्रव्यों के भाव होता है, यानी भाव छहों द्रव्यों में पाए जाते हैं, अर्थात भावों के स्वामी छहों द्रव्य है। तो एक ही भाव होगा ना, छह द्रव्य उसके स्वामी होंगे, तो छहों द्रव्य अपने अपने भावों के स्वामी हैं। जीव द्रव्य अपने भावों का स्वामी और पुद्गल द्रव्य अपने भावों का स्वामी। अथवा किसी भी द्रव्य के भाव नहीं होता है क्योंकि यहाँ परिणामी करना, पारिणामी लिखा है ना, क्योंकि ऊपर प्राकृत में भी लिखा है, देखो परिणामी परिणामानम संग्रहण यादो भेदाभाव। क्या कहते हैं? क्योंकि परिणामी और परिणाम के, परिणाम यानी परिणमन पर्याय, और परिणामी किसको कहते हैं? अशोक भाई मालूम है आपको, परिणामी जो परिणाम करता है वो परिणामी। जैसे धन और जिसके पास धन है वो धनी, गुण और गुणी, पर्याय और पर्यायी। तो अभी किसको कहेंगे ये परिणामी? द्रव्य को। तो ये द्रव्य और परिणाम उनमें, हाँ, परिणामी और परिणाम के, पारिणामी हुए ना उसको प करना वहां, परिणाम और परिणामी यानी द्रव्य और पर्याय उनके संग्रहणय से कोई भेद नहीं है। ये संग्रहणय क्या है, याद है क्या? हाँ, जो भेद नहीं करता है, इकट्ठा समझता है, उसको संग्रहणय कहते हैं। यानी द्रव्य और भाव को पृथक नहीं करेंगे। पहले तो क्या कहें, छहों द्रव्यों के भाव होता है, फिर कहते हैं कि भाव नहीं है क्योंकि भाव है द्रव्य का भाव है कहने में भेद हो गया। आत्मा का ज्ञान यानी आत्मा सेपरेट और ज्ञान सेपरेट ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि संग्रह नहीं की अपेक्षा कह रहे। द्रव्य का गुण कहो या द्रव्य की पर्याय कहो, द्रव्य का परिणाम कहो, तो उसमें दो बातें हो जाती है, क्योंकि दोनों के बीच में संबंध आया ना, का लगाया, स्वामित्व बताया, इसलिए कहते उसका नहीं होता। ये दो पद्धति है कथन करने की। तो संग्रह ने उसे कहते, जैसे हम सत कहते ही सभी द्रव्य उसमें आ गए, तो ये शुद्ध संग्रह ने हो गया सबका, बस है। अभी उसमें ये जीव है, ये पुद्गल है, ये धर्म अधर्म आकाश काल है, ये भेद किया तो ये कहेंगे हम व्यवहार नहीं हो गया। अकेले द्रव्य ऐसा कहेंगे वो तो सबको मिलकर कहा, छहों द्रव्यों को, तो वो द्रव्य कहेंगे तो वो हो गया संग्रह नहीं, और फिर जीव पुद्गल धर्म अधर्म भेद करेंगे तो हो गया व्यवहार नहीं। अभी हम अकेला सब जीवों को मिलकर जीव कहेंगे तो हो गया संग्रह नहीं, और फिर ये संसारी है, ये मुक्त है, ऐसा उसमें भेद करेंगे तो हो जाएगा व्यवहार नहीं। तो हमारा प्रयोजन भेद करने का है या अभेद करने का है? यानी अकेले जीव कहते ही वो संग्रहने का विषय के व्यवहारने का विषय ऐसा नहीं कह सकते। अपना प्रयोजन क्या है उस पर ये निर्भर है, क्योंकि यदि जीव हमें छह द्रव्यों में से जीव को भिन्न बताना है तो व्यवहारने का विषय हो जाएगा। और सभी जीवों का इकट्ठा करना है तो वही जीव ये पदार्थ जो है वो संग्रहण का विषय हो जाएगा। तो हम किस प्रयोजन से उसको बता रहे हैं, सभी जीवों को इकट्ठा करके बताना है या द्रव्यों में भिन्न भिन्न करके बताना है, उस पर वो संग्रहण है कि व्यवहार नहीं है ये निश्चित होगा। तो अभी यहाँ क्या कहते हैं, परिणाम और परिणामी संग्रहण करके यानी अभेद करके, उसके भेद ही नहीं है तो ये जीव का ये भाव है ऐसा कथन हो नहीं सकता, इसलिए वहाँ कहा द्रव्य का भाव नहीं होता, अथवा करके ये दूसरे नय का कथन बता दिया उन्होंने। ये दो प्रश्न हो चुके, निर्देश भी बताया स्वामित्व भी बताया। अब साधन कहते हैं, भाव किससे होता है अर्थात भाव का साधन क्या है। आप यहाँ तीन बाजू में ब्रैकेट में या समास में वो तीन आंकड़ा लिख सकते हैं अपने समझने के लिए। ये छह बातें बताने वाले हैं ना अभी, पहला हुआ निर्देश, दूसरा हुआ स्वामित्व, अब ये जो तीसरी शंका जो है भाव का साधन क्या है। तो कहते हैं ये जो भाव है वे कर्मों के उदय से, क्षय से, क्षयोपशम से, कर्मों के उपशम से अथवा स्वभाव से होता है। ये पांच भावों के पांच भिन्न भिन्न कारण बताए। ये कारण यानी साधन यानी यहाँ अभी पर साधन बताया ना, निमित्त का कथन कर दिया है, इसको साधन कहा। उनमें से जीव द्रव्य के भाव उक्त पांचों ही कारणों से होते हैं, क्योंकि जीव द्रव्य में ये पांच भाव पाए जाते हैं। हमने पहले देखा है भाव तो छह द्रव्य में पाए जाते हैं, तो यहाँ जो पांच कारण बताए हैं वो पांच कारण कहाँ एप्लीकेबल है, जीव द्रव्य में। अन्य द्रव्य में पांच भाव नहीं होते तो वहाँ पांच कारण भी नहीं बनेंगे। किंतु पुद्गल द्रव्य के भाव कर्मों के उदय से अथवा स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। पुद्गल द्रव्य में दो ही भाव लगेंगे और उसके दो ही साधन लगेंगे, कर्मों का उदय से और स्वभाव से, तथा शेष चार द्रव्यों के भाव स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं, यानी शेष जो चार है वो स्वभाव से ही उनके भाव हो गए। अब ये चौथा पॉइंट बताएंगे, भाव कहाँ पर होता है अर्थात भाव का अधिकरण क्या है, कहाँ पाए जाते हैं भाव, उसका आधार क्या है, अधिकरण यानी उसका आधार क्या है। तो समाधान, भाव द्रव्य में ही होता है क्योंकि गुणों के बिना गुणों का रहना असंभव है, यानी गुणों का या द्रव्य का परिणमन उसी को तो हमने भाव कहा था। तो ये द्रव्य या सॉरी गुण या पर्याय कहाँ रहती है, द्रव्य के संपूर्ण भाग में। गुण की परिभाषा क्या है, द्रव्य के संपूर्ण भाग में और संपूर्ण अवस्था में रहता है उसको गुण कहते हैं, और पर्याय संपूर्ण भागों में रहते हैं और एक समय में रहती है वो पर्याय, एक समय के लिए रहती है ना वो पर्याय है, यानी वो रहता कहाँ है, उसका क्षेत्र कहाँ है, आधार क्या है, तो द्रव्य पूरा ही द्रव्य, जितना बड़ा द्रव्य है उतनी ही बड़ी उसकी पर्याय है। तो ये भाव की हाँ आपका प्रश्न है कुछ,
हाँ द्रव्य के भाव कर्मों के उदय से,
हाँ
ऐसा क्यों नहीं कहा, माने वो निमित्त का कथन करना है क्योंकि वो तो पुद्गल द्रव्य के भाव तो उनका स्वभाव हो गया।
नहीं, कर्म जो बने हैं वो उनके विभाव रूप
भाव से, जीव द्रव्य के भाव से
उनका वो विभाव रूप परिणमन हो गया है। कर्मों का उदय आदि जो है उसमें जो उसके जो निमित्तपना जो बनता है जीव द्रव्य के लिए वो उसका विभाव है, वो उसका स्वभाव नहीं है। पुद्गलों के जो परमाणु रूप से रहने के है वो उसका स्वभाव माना जाएगा। हाँ अलग बताया, और ये कर्मों के उदय से नहीं, उसमें ऐसा ले सकते हम जीव के रागादि भाव से, जीव के रागादि भाव से उसमें कारण जीव का रागादि हो सकेंगे, क्योंकि कर्म स्वयं उदय रूप परिणमा है। पुद्गल का परमाणु रूप रहना वो उसका स्वभाव है, वो स्वाभाविक है उसका। या कोई भी जो पुद्गल का स्पर्श रस गंध रूप परिणमना ये उसका स्वभाव, क्योंकि पारिणामिक भाव में चला जाएगा ना उसका, हर एक द्रव्य का अपना जो स्वभाव है उस रूप परिणमने का वो पारिणामिक भाव है जो अनादि अनंत कायम है उसमें। अब ये जो कर्म रूप जो परिणमित हो गया है वो उसका विभाव हो गया पुद्गलों का। देखो स्पर्श रस गंध वर्ण जो है वो तो उसके स्वभाव है, ये पुद्गल के स्वभाव है, परंतु अभी ये जो राग रूप हो जावे, द्वेष रूप हो जावे नहीं, ये स्वयं राग द्वेष नहीं होता है, परंतु राग द्वेष में वो निमित्तपना बनता है ना इसका, कर्म का जो कर्म स्कंध है उसका जीव के अलग अलग परिणामों में जो निमित्तपना बनता है उसमें जो उसके अलग अलग फल मिलते हैं, अनुभाग जो उसका है, ये अनुभाग का होना के कर्म जीव पुद्गल का स्वभाव नहीं है। परंतु वो उसमें जो है ना राग रूप जीव में राग उत्पन्न करावे ऐसी शक्ति अभी आ गई उसमें, ये उसका विभाव हो गया है। कर्मों में ही ऐसी शक्ति है, अभी कोई भी पुद्गल में ऐसी शक्ति नहीं है, अभी ये क्लिप है, इसमें क्या आपको राग रूप परिणाम आ रही है क्या? परंतु ये जो अभी चारित्र मोहनी कर्म हम, वो तो हम जरूर वहां तो राग द्वेष रूप परिणाम आने में निमित्त है, उसका कारण भी कहा हमने, इसीलिए उसको औदयिक भाव कहा हमने, जीव का औदयिक भाव। तो कर्म जो उदय रूप परिणाम रहा है वो भी उसका विभाव भाव हो गया, होते ही नहीं, वो तो अनादि अनंत स्वभाव परिणाम ही है उनका, इसलिए उनमें अकेला स्वभाव से ही उत्पन्न होते कहा, अन्य जीवों के जो भाव है वो स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं। और जीव और पुद्गल में ये स्वभाव विभाव दोनों होते हैं। तो अधिकरण अभी हमने देखा कि द्रव्य में ही होता है। अब पांचवा प्रश्न, भाव कितने काल तक होता है, उसका काल कितना है? तो अभी अलग अलग प्रकार से बताएंगे कि भाव अनादि निधन होते हैं, यानी अनादि निधन भाव बताएंगे, फिर कोई अनादि शांत भाव होगे, कोई सादी शांत भाव होगे, कोई सादी अनंत भाव होगे, प्रवाह अपेक्षा एक एक समय करके। देखो अनादि शांत अनादि निधन है ना, अनादि अनिधन अनादि अनंत रहने वाले ऐसे जो कोई भाव है वो कौन से है? जैसे अभव्य जीवों के असिद्धता, असिद्धत्व जो है अभव्य जीवों में वो अनादि अनंत पड़ा है, वो कभी पलटने वाला नहीं है। फिर धर्मास्थि काय के गमन हेतुता, अभी हर एक के अभी यहाँ विशेष गुण ले लिए, अधर्मास्थि काय के स्थिति हेतुता, आकाश द्रव्य के अवगाहन स्वरूपता और काल द्रव्य के परिणमन हेतुता इत्यादि, क्योंकि ये स्वभाव रूप भाव हो गए उनके, तो ये तो अनादि अनंत रहेंगे। अब दूसरा प्रकार जो है अनादि शांत, हाँ हेतुता है ना, हेतुत्व परिणमन हेतुत्व कहो, अवगाहन हेतुत्व आदि। अभी अनादि शांत स अंत, अंत सहित जो अनादि से चले आ रहे थे परंतु अभी उसका अंत हो जाएगा, कैसे? जैसे भव्य जीव की असिद्धता, भव्य जीवों में भी जब तक वो मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ था तब तक वो असिद्धत्व उसमें है, कौन से गुणस्थान तक रहेगा? चौदहवें गुणस्थान तक असिद्धत्व। कौन सा भाव है ये पांच भावों में से? औदयिक भाव है। अभी गिनेंगे सब, बाकी आएंगे क्योंकि हम भूल गए ना सभी बातों को, फिर सभी भावों को याद करेंगे। असिद्धत्व या औदयिक भाव है तो कहाँ तक है? चौदहवें गुणस्थान तक। तो ये भव्य जीवों का जो असिद्धत्व है उनके मोक्ष प्राप्त होने पर असिद्धत्व का अंत हो गया, सिद्धत्व प्राप्त हुआ यानी असिद्धत्व समाप्त हुआ। तो ये भाव अनादि से था परंतु मोक्ष प्राप्त होते ही उसका अंत हुआ, इसलिए अनादि शांत कहते हैं। भव्यत्व भी अनादि से, वो पारिणामिक भाव है ना, भव्यत्व पारिणामिक भाव है, परंतु ये कैसा पारिणामिक भाव है? भव्यत्व होने योग्य, जब सिद्ध पर्याय प्राप्त होती है तो भव्यत्व की अभिव्यक्ति हो गई, अब सिद्धों को भव्य नहीं कहते, सिद्ध कहेंगे उनको। भव्य कब तक कहेंगे? चौदहवें गुणस्थान तक, बाद में तो उनको सिद्ध कहेंगे। मिथ्यात्व भी अनादि से चला रहा है और सम्यक तो प्राप्त होने पर वो उसको शांत हो गया, और असंयम इत्यादि। अब सादी अनंत भाव है, यानी एक बार प्रकट हुआ, पहले से तो नहीं था, प्रकट हुआ है और फिर अनंत काल तक वैसा भाव चलेगा। मालूम है आपको कोई? हाँ, केवल ज्ञान, केवल दर्शन इत्यादि। अब इसमें लिस्ट लंबी लगा सकते हैं हम, क्षायिक सम्यक वगैरह। एक बार प्रकट हुआ तो अनंत काल तक चलेगा। सादी शांत भाव, सादी स आदि और स अंत, जो जिसको आदि है यानी जो अभी नया शुरुआत हुआ है और फिर उसकी समाप्ति भी होने वाली है, तो सादी शांत भाव जैसे सम्यक्त्व। कैसे? कोई मिथ्या दृष्टि है, सम्यक्त्व प्राप्त किया और दोबारा मिथ्या दृष्टि हुआ तो उसका सम्यक्त्व है, वो सादी शांत है। यहाँ क्षायिक सम्यक्त्व की बात नहीं है। सम्यक्त्व प्राप्त हुआ और फिर भ्रष्ट होकर, जैसे हमने अंतर में देखा था ना, मिथ्यात्व में से सम्यक्त्व हुआ और फिर दोबारा मिथ्यात्व में चला गया, तो इसका जो सम्यक्त्व है वो सादी शांत है। सम्यक्त्व और संयम धारण कर पीछे आए हुए जीवों के मिथ्यात्व असंयम इत्यादि, उसको भी सादी शांत कहा। यानी उनका जो मिथ्यात्व है, सादी मिथ्यात्व, फिर दोबारा सम्यक्त्व प्राप्त करेंगे तो मिथ्यात्व भी सादी शांत हो गया। एक बार सम्यक्त्व प्राप्त करने के बाद जो मिथ्यात्व धारण किया है, हाँ, वो भी नष्ट हो जाएगा, तो उसको भी सादी शांत कहा। अभी छठा पॉइंट, भाव कितने प्रकार का है। ये छह अनुयोग द्वारों के द्वारा किसी पदार्थ का निरूपण किया जाता है। पहले हमने नाम देखा, स्वामी देखा, फिर साधन देखा, अधिकरण देखा, और अभी अभी वो काल देखा, और कितने प्रकार का है वो अभी देखने जा रहे हैं। ये छठा पॉइंट। तो कहते हैं औदयिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक के भेद से भाव पांच प्रकार का है। अभी एक एक की बात करेंगे। उनमें से जो औदयिक भाव नामक जीव द्रव्य का भाव है, जीव द्रव्य की बात करेंगे, अन्य द्रव्यों की यहाँ बात नहीं चलेगी, जीव के औदयिक भाव की अभी यहाँ चर्चा है, वह स्थान की अपेक्षा 8 प्रकार का है और विकल्प की अपेक्षा 21 प्रकार का है। ये स्थान और विकल्प क्या होते हैं? हमने तो अभी तक कितने गिनाए थे औदयिक भाव? हाँ, 21। कौन कौन से?
चार गति, चार कषाय, छह लिशा, तीन वेद, असंयम, मिथ्या दर्शन
और सिद्ध। हाँ, अभी उसके ग्रुप बना। जैसे चार गति कही आपने, तो गति कह दो, वो एक स्थान हुआ। कषाय एक स्थान हुआ, लेशा एक स्थान हुआ, इसको स्थान कहते हैं। अब चार को अलग अलग गिनाओ तो उसके विकल्प हो जाएंगे, भेद हो जाएंगे। जैसे नाम कर्म में भी हमने देखा था ना, पिंड प्रकृति एक साथ गिना, पिंड पिंड एक साथ, तो 42 हो जाते हैं, और उसके भेद करके करो तो 93 हो जाते हैं। तो यहाँ ये स्थान कहेंगे। तो देखिए, स्थान की अपेक्षा 8 प्रकार है, यानी उसके प्रकार 8 हुए। जैसे गति है, एक प्रकार हुआ। अभी गति के चार भेद करेंगे हम, मनुष्य गति, देव गति वगैरह, तो उसके वो चार गिनने पड़ेंगे हमको, तो उसको हम विकल्प कहेंगे। जहाँ जहाँ स्थान और विकल्प यहाँ कहाँ है अभी भावों में, तो वह इसे समझना है। तो शंका पूछता है शंकाकार, स्थान क्या वस्तु है, यानी स्थान किसे कहना, भाव की उत्पत्ति के कारण को स्थान कहते हैं। जैसे अभी गाथा के द्वारा बता रहे, गदिलिंग कसायाविय मिच्छादंसनमसिद्ध दन्नानं लेसा असंजमोचिय होंति उदयस्य ठाणायिं। गति, लिंग, कषाय, मिथ्यादर्शन, असिद्धत्व, अज्ञान, लेशा, असंयम, ये औदयिक भाव के 8 स्थान होते हैं। अभी एक साथ कितने हो जाएंगे वो तो बातें आगे करेंगे हम, यानी ये अलग अलग 8 स्थान हैं। अब इन स्थानों के विकल्प कहते हैं। अब इसी में भेद करके कहेंगे तो गति 4 प्रकार के है, कषाय 4 प्रकार के है, ये बातें करेंगे आप। देखो, ये लिंग कहा ना, लिंग का ही अर्थ होता है वेद, वेद कहो या लिंग कहो एक ही बात है। गति 4 प्रकार की है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। लिंग 3 प्रकार का है, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग और नपुंसक लिंग। यहाँ शरीर की बात नहीं है, भावों की बात चल रही ना, जीव के भावों की बात चल रही है, तो स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद जो है उन भावों की यहाँ चर्चा है। कषाय चार प्रकार का है, क्रोध, मान, माया और लोभ। और मिथ्या दर्शन एक प्रकार का है, असिद्धत्व एक प्रकार का है। अब शंका, असिद्धत्व क्या वस्तु है, उसका समाधान कहते हैं अष्ट कर्मों के सामान्य असिद्धत्व कहते हैं। यानी जब तक आठ कर्मों में से कुछ भी कोई भी कर्म बाकी है तो हम क्या कहेंगे, असिद्धत्व। जीव के साथ कर्म बंधे हुए हैं और जब तक वो पूर्ण रूप से छूट नहीं जाते हैं तो उसको कहेंगे अभी असिद्धत्व। अभी कर्मों की भाषा में समझाया यहाँ। अब अज्ञान की बात करेंगे, अज्ञान लेश और असंयम रहे ना, अज्ञान एक प्रकार का है, लेशा छह प्रकार के। अभी अभी हमने लेशा का प्रकरण में देखा था, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। असंयम एक प्रकार का है। इस प्रकार ये सब मिलकर औदयिक भाव के 21 विकल्प होते हैं। तो हम आठ बातें ध्यान में रखेंगे तो आगे के विकल्प तो आसान है, तो हम ये आठ याद रख सकते हैं। गति, लिंग, कषाय, मिथ्या दर्शन, असिद्ध, अज्ञान, लेशा और असंयम। अब शंकाकार पूछता है, पांच जातियां, छह संस्थान, छह सहनन आदि औदयिक भाव में कहां अर्थात किस भाव में अंतर्गत होते हैं, क्योंकि वो भी कर्म के उदय से होने वाली बातें हैं। जातियां कौन सी जाती है, याद है जाति किसको कहना, एक इंद्रिय जाति, दो इंद्रिय जाति, तीन इंद्रिय जाति, उसको जाति कहते हैं। छह संस्थानों के नाम आपको याद है प्रेरणा बेन? हाँ, समचतुरस्थ संस्थान, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति, कुब्जक, वामन और हुंडक। ये छह संस्थान हुए। और छह सहनन आपको याद है भाई? अशोक भाई आपको पता है? नहीं। देवेंद्र भाई, वज्र, वृषभ, नाराज सहनन, वृषभ नाराज सहनन नहीं होता, वज्र नाराज सहनन, नाराज सहनन, पहले अर्ध नाराज, कीलित, असंप्राप्त, असरूपाटिका सहनन। ये छह प्रकार के सहनन है। तो नारकियों को कौन सा सहनन होता है? नारकियों को संस्थान पूछा क्या मैंने? सहनन होता है कि सहनन? सहनन नहीं होता है, संस्थान हुंडक वाला होता है, बराबर है। देवों में और नारकियों में सहनन नहीं हो पाया जाता, संस्थान होता है। देवों के तो समचतुरस्र संस्थान होता है, प्रोपोर्शनेट, और नारकियों में तो हुंडक संस्थान पाया जाता है। ये सहनन आदि औदयिक भाव में, यानी औदयिक भाव में कौन से औदयिक भाव में इनको ले लेना है, अभी जो आठ प्रकार बता है उसमें कहाँ लेना है, उसका समाधान। उक्त जातियों आदि का गति नामक औदयिक भाव में अंतर्भाव हो जाता है। जैसे मनुष्य गति वाला होगा तो मनुष्य गति योग्य जो जाति है तो पंचेंद्रिय जाति उसमें अंतर्भाव हो जाएगा। अभी मनुष्य गति में जो यथा योग्य सहनन है वो उसमें अंतर्भूत हो जाएगा, संस्थान वगैरह सब उसी में आते हैं। देखो, गति नामक औदयिक भाव में अंतर्भाव होता है क्योंकि इन संस्थान आदि का उदय गति नाम कर्म के उदय का अविनाभावी है। जहाँ गति नाम कर्म का उदय है वहां पर इनका भी उदय पाया जाता है, संस्थान का, सहनन का, आदि का। इस व्यवस्था में लिंग, कषाय आदि औदयिक भाव उनसे भी व्यभिचार नहीं आता है क्योंकि उन भावों में उस प्रकार की विवक्षा का अभाव है। यानी इसको जो जाति, संस्थान, सहनन आदि को गति नामक औदयिक भाव में हम इंक्लूड करते हैं तो जो अन्य जो भाव है ना, वेद है, कषाय आदि है, उसके साथ तो कोई व्यभिचार दोष है नहीं, उसमें तो कोई मिलावट या घोटाला नहीं होता है क्योंकि वे तो अलग ही टाइप के भाव है सब। उस प्रकार की विवक्षा का भाव है, उनमें वैसी विवक्षा नहीं होती। जैसे गति में ये बातें बताई जाती है, विशिष्ट गति में विशिष्ट सहनन है या संस्थान है या ये पाए जाते हैं जाति वगैरह, वैसे अन्य भावों में वो नहीं पाए जाते। ये बात हो गई, ये औदयिक भाव की बता दी उन्होंने। अब औपशमिक भाव की बात चलेगी। पहला हुआ औदयिक भाव, उसमें स्थान देखे 8 और विकल्प देखे 21। अब औपशमिक भाव देखेंगे, औपशमिक भाव में कितने स्थान है और विकल्प देखो, यहाँ पढ़ेंगे। औपशमिक भाव स्थान की अपेक्षा 2 प्रकार और विकल्प की अपेक्षा 8 प्रकार का है। अभी हमें भी मालूम नहीं कौन से 8 प्रकार देखेंगे ना, कहाँ भी है, ऊपर गाथा पढ़ेंगे। सम्मतम चारितम दोच्चिय ठाणयमु समे होन्ति अठवियप्पायतः कोहाइया मुने दौवा ठाणयमु समे वो समय। औपशमिक भाव में सम्यक्त्व और चारित्र ये दो ही स्थान होते हैं, यानी औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र ये दो स्थान हैं। यानी औपशमिक भाव कौन से कर्म के निमित्त से होगा, कौन से कर्म के उपशम से होगा, हाँ यानी मोहनीय कर्म लगेगा उसमें। दर्शन मोहनीय के निमित्त से वो औपशमिक सम्यक्त्व है और चारित्र मोहनीय के निमित्त से औपशमिक चारित्र है। तथा औपशमिक भाव के विकल्प 8 होते हैं, जैसे हमने औदयिक भाव के विकल्प देखे थे अलग अलग, वहां यहाँ पर 8 विकल्प बताएंगे, जो कि क्रोधादि कषायों के उपशमन रूप जानना चाहिए। जब हम औपशमिक सम्यक तो कहते हैं तो किसका उपशम हुआ, वहां दर्शन मोहनीय का उपशमन हुआ बराबर। और जब उपशम श्रेणी में किसका उपशम होता है, चारित्र मोहनीय का उपशम होता है, तो क्रम से होता है, क्रम से कोई ना कोई कषाय उपशमित होती है। क्रोध का उपशम हुआ, फिर मान का हुआ, उसके पहले क्या हुआ, वेद का उपशम हुआ। वेद में भी सबसे पहले किसका उपशम होता है, नपुसक वेद का, फिर स्त्री वेद का, फिर पुरुष वेद और 6 कषाय का एक साथ होता है, तो उनको एक साथ गिनेंगे। फिर क्रोध का, मान का, माया का, ऐसा अलग अलग गिनेंगे उसको। अब यहाँ पर समझाएंगे, देखो औपशमिक भाव के सम्यक्त्व और चारित्र ये दो ही स्थान होते हैं, क्योंकि औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र ये दो ही भाव पाए जाते हैं। इनमें से औपशमिक सम्यक्त्व 1 प्रकार का है और औपशमिक चारित्र 7 प्रकार का है। ये हमें नई बात है ना, औपशमिक चारित्र जो 7 प्रकार का बताया है, तो लॉट में होता है ना, पहले इसका उपशम हुआ, फिर इसका हुआ, फिर इसका हुआ, उसकी अपेक्षा 7 भेद करेंगे। जैसे पहला पॉइंट, आप पेंसिल से वहाँ पॉइंट लिखना तो हमें भी ख्याल में लें। नपुसक वेद के उपशमन काल से काल में 1 चारित्र। दूसरा पॉइंट, स्त्री वेद के उपशमन काल में 2 चारित्र। तीसरा पॉइंट, पुरुष वेद और 6-9 कषायों के उपशमन काल में 3 चारित्र। चौथा, क्रोध संज्वलन के उपशमन काल में 4 चारित्र। पांचवें पॉइंट पर, मान संज्वलन के उपशमन काल में 5 चारित्र। छठे पॉइंट, माया संज्वलन के उपशम काल में 6 चारित्र। और सातवें में, लोभ संज्वलन के उपशमन काल में 7 औपशमिक चारित्र होता है। तो मेरा ऐसा प्रश्न है, अब 3 वेद के साथ कोई जीव नहीं चढ़ेगा श्रेणी, तो मान लेते पुरुष वेद के साथ चढ़ेगा श्रेणी, तो उसके इसमें से कितने चारित्र हो गए, 2 कम। आप क्या कहते हैं मंजूताई, पुरुष वेद के साथ जो जिसको पुरुष वेद का उदय है, अब उपशम श्रेणी चल रहा है, देवेंद्र भाई आप कहेंगे क्यों, हाँ कौन सा कर्म बंधन चल रहा है, सभी वेदों का बंध चल रहा है, नपुसक वेद का बंध कब रुक जाता है? पहले गुणस्थान में, स्त्री वेद का दूसरे गुणस्थान और पुरुष वेद का नौवे गुणस्थान। जब तक वेद वहाँ, भले नपुसक वेद का किसी को उदय होवे या स्त्री वेद का उदय होवे, पुरुष वेद ही बंधेगा एकमात्र। परंतु क्या है, अभी कोई जीव पुरुष वेद है ना, मान लेते तीन तीन भवन से पुरुष वेद चल रहा है, उसका सम्यक दर्शन है, उसका पुरुष वेद चल रहा है, फिर भी उसकी सत्ता में नपुसक वेद और स्त्री वेद के वो परमाणु पड़े, कर्म पड़ा है उसकी सत्ता में। कोई भी जीव हो, किसी भी वेद के सहित चढ़ेगा तो पहले में पहले नपुसक वेद का उपशमन करेगा, सत्ता में पड़े हुए की ही बात चल रही है। पुरुष वेद का भले उदय है और पुरुष वेद बांध भी रहा है, फिर भी जो सत्ता में नपुसक वेद पड़ा है उसका उपशमन होगा। आपका प्रश्न है, शाइक को भी तीनों वेद का बंध होता है? बंध की बात ही नहीं है, बंध एकमात्र पुरुष वेद का, और वो भी नौवे गुणस्थान के पहले भाग तक होता है। परंतु उदय किसी को नपुसक वेद का हो सकता है, किसी को स्त्री वेद का और किसी को पुरुष वेद का। हमने देखा था ना, अलग अलग वेद वाले जीव नौवा गुणस्थान पार कर कर मोक्ष भी प्राप्त कर सकते, उसकी अपेक्षा से तीनों वेदों का उदय बताया है। किसी भी वेद का उदय क्यों नहीं हो, जब उपशमना चलती है, चारित्र मोहनियों को उपशमित कराया तो सत्ता में पड़े हुए कर्मों की भी उपशमना होगी। वहाँ पहले में पहले नपुसक वेद का उपशमन होगा, फिर स्त्री वेद का, फिर पुरुष वेद और छह नौकशा एक साथ, फिर क्रोध का, मान का, माया का और लोभ का, उसमें संज्वलन लगा लेना, मगर सत्ता में पड़े हुए सभी की उपशमना होती है। यानी वो अनंतानुबंधी का तो विसंयोजन करके चढ़ता है, परंतु अन्य भी जो है ना, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, जो कुछ सत्ता में पड़े है वो सभी उपशमित हो जाते हैं। इसलिए यहाँ सात प्रकार का चारित्र कहा। हमें ऐसा लगता है ना कि अलग अलग वेदों का उदय है तो उनमें दो कम हो जाएंगे उपशमनाएं के, ऐसा नहीं है, क्योंकि सत्ता में है प्रकृतियां। मैंने वो खास प्रश्न पूछा था आपको, भिन्न भिन्न कार्यों का सूचक होने से कारणों में भेद की सिद्धि होती है। भिन्न भिन्न कार्य कौन से? अभी ये जो हमने सात भिन्न भिन्न चारित्र कहे, कार्य हुआ ना, भाव हुआ, औपशमिक चारित्र के सात भेद बताए। क्यों? क्योंकि उनके कारण भिन्न भिन्न हैं। पहले नपुसक वेद का उपशमना हुआ, वो चारित्र अलग, ऐसे अलग अलग समझाए उन्होंने। इसलिए औपशमिक चारित्र सात प्रकार का कहा है। अन्यथा उक्त प्रकार की विवक्षा न की जाए तो, ये तो विवक्षा तो अभी समझाने के लिए की, परंतु सरसकट ऐसा सामान्य से क्या कहेंगे, औपशमिक चारित्र है, बस उसका एक ही वेद बताएंगे। विवक्षा न की जाए तो वह अनेक प्रकार का है, क्योंकि यहाँ तो और अलग ही बात कह रहे हैं। वो कहते हैं अभी नपुसक वेद का उपशमन हुआ या किसी प्रकृति का उपशम हुआ, ऐसा नहीं कहेंगे। एक एक समय के जो परिणाम है, हम देखते हैं श्रेणी जब चढ़ता है, प्रत्येक समय का परिणाम पूर्व परिणाम से अनंत गुणा विशुद्ध होता है, अनंत गुणा। तो उतने जितने परिणाम होंगे उतना प्रकार का वहां चारित्र भी होगा, क्योंकि हर एक गुणस्थान वहां का एक एक अंतर्मूर्त वाला है, और एक अंतर्मूर्त में असंख्यात समय होते हैं, और प्रत्येक समय का परिणाम भिन्न भिन्न। अब ये अनिवृत्तिकरण के बाद तो उनके परिणाम भी समान होंगे, परंतु उसके पहले तो आठवें गुणस्थान में हम देखते असंख्यात लोक प्रमाण भिन्न भिन्न परिणाम पाए जाते। नौवे गुणस्थान में जब जीव एंटर होता है तो असंख्यात गुणा असंख्यात लोक गुणा असंख्यात, आठवें में असंख्यात लोक, और नौवे के स्टार्टिंग में असंख्यात लोक गुणा असंख्यात लोक, और फिर सबके परिणामों में अनंत गुणी विशुद्धि होती रहती है। तो इतने जो लिखा ना, प्रति समय उपशम श्रेणी में पृथक पृथक असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा के निमित्तभूत परिणाम पाए जाते हैं। उपशम श्रेणी में असंख्यात गुणा निर्जरा होती है तो उसमें अलग अलग बहुत सारे परिणाम पाए जाते हैं, अलग अलग जीवों के अलग अलग परिणाम पाए जाते हैं, और एक ही जीव के हर समय के परिणाम अधिक अधिक विशुद्धि वाले पाए जाते हैं। तो वहाँ चारित्र भी अनेक प्रकार का कहने में आएगा। ये तो आसान बात है, उसमें कोई समझाने की बात नहीं। देखो जैसे परिणामों की जो विशुद्धि है वो समान है, परंतु किसी के क्रोध का उदय है, किसी के मान का उदय है, किसी के लोभ का उदय है, किसी के माया का उदय है, किसी के पुरुष स्त्री नपुंसक वेद का उदय है, कषायों की अपेक्षा उसमें भी फर्क पड़ेगा, परंतु परिणामों की विशुद्धि एक जैसी है। वहां पर परिणाम समान है ऐसा जो कहते हैं वो विशुद्धि की अपेक्षा, तारतम्यता विशुद्धि की समझना। अब तीसरा पॉइंट चालू हो जाता है। हमने औदयिक भाव के 8 स्थान और 21 विकल्प देखे, और औपशमिक भाव के 2 स्थान और 7 चारित्र और 1 सम्यक, तो 8 विकल्प देखे। विकल्प 8 गेट। अभी तीसरा क्षायिक भाव कहेंगे। क्षायिक भाव स्थान की अपेक्षा 5 प्रकार का है और विकल्प की अपेक्षा 9 प्रकार का है। अभी स्थान में क्या लेंगे हम? ना देखो, पहले घाती कर्म याद करो, ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, मोनीय और अंतराय, बराबर। मोनीय के 2 भेद करो तो 5 हो जाएंगे। अभी क्षायिक भाव यानी क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, मोनीय में 2 करो, क्षायिक सम्यक तो क्षायिक चारित्र और अंतराय आदि जो सब जो 5 है तो लब्धि उसको कहो। तो सबको एक साथ अगर लब्धि हम कहेंगे, क्षायिक लब्धि, तो ये 5 मूल भेद हो जाएंगे, और वो 5वें स्थान में 5 भेद करेंगे तो और 4 बढ़ जाएंगे तो 9 हो जाएंगे। अरविंद भाई ख्याल में आता है? देखो, क्षायिक भाव स्थान की अपेक्षा 5 प्रकार का है और विकल्प की अपेक्षा 9 प्रकार का है, कहा भी है, गाथा ऊपर है। लब्धि ओ सम्मतम चारित्तम दंसनम तहाणानम ठाणायम पंचखये भावे जिन भाषियाइम तु। जिनेन्द्र से भाषित यानी कथित ऐसे है। देखो दानादि 5 दानादि लब्धियां, अब यहाँ 5 नहीं कहना, दानादि लब्धियां, लब्धि का मिलकर एक ग्रुप बना दिया। क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र, क्षायिक दर्शन तथा क्षायिक ज्ञान, इस प्रकार क्षायिक भाव में जिन भाषित 5 स्थान होते हैं। अभी ये लब्धि के 5 भेद करेंगे हम। पहले तो हम सबको एक साथ लब्धि कह दिया था, अभी 5 अलग अलग गिनेंगे तो 4 और बढ़ जाएंगे, 9 हो जाएगी क्षायिक भाव। अब लब्धि सम्यक्त्व चारित्र ज्ञान दर्शन ये 5 स्थान क्षायिक भाव में होते हैं। उनमें लब्धि 5 प्रकार की है, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर्य। ये जीव के गुण है, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। परंतु हम समझाने के लिए व्यवहार की भाषा में समझाते ना, दान देना वगैरह वगैरह, तो दान और लाभ तो समझ में आया। भोग और उपभोग क्या बात है अशोक भाई, आपको पता है भोग किसको कहना और उपभोग किसको कहना? देखो भोग यानी किसी चीज का एक बार हम भोग लेते हैं, जैसे भोजन किया तो उसको भोग कहेंगे, और उपभोग यानी वारंवार, जैसे वस्त्र है, घर है, गहने हैं, तो हम बहुत बार एक ही चीज को यूटिलाइज करते हैं, भोगते हैं, तो उसको कहते हैं उपभोग। और क्षायिक वीर्य, क्षायिक सम्यक्त्व एक विकल्पात्मक है, उसके भेद नहीं है, क्षायिक सम्यक्त्व एक प्रकार का है। क्षायिक चारित्र एक भेद रूप है, केवल ज्ञान एक विकल्पात्मक है और केवल दर्शन एक विकल्प रूप है। इस प्रकार से क्षायिक भाव के 9 भेद हैं। क्षायो, अभी यहाँ से चौथा शुरू हो जाता है, क्षायोपशमिक भाव। क्या? दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। अभी जैसे क्षायिक ज्ञान किसको कहेंगे? केवल ज्ञान को क्षायिक ज्ञान कहते हैं, वो जीव का गुण है कि नहीं है, बराबर। तभी क्षायिक दान किसको कहेंगे? जो हम दूसरे लोगों को दान देते उसको दान कहेंगे, वो क्षायिक भाव यानी जीव का गुण है कि नहीं? तो दान तो किसका दान किसको देना है? ये अपना जो है अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, वो अपने अपने में ही देना है ना, अपने आप को ही देना है, अपने आप को ही भोग है, अपने आप का ही उपभोग है। ये सुख का भोग उपभोग वारंवार चल रहा है उसकी बात है यहाँ। तो ये सब जीव के ही गुण है, परंतु वो समझाए कैसे? इसलिए वो हम परद्रव्य का लाभ हुआ या पर को दान दिया ऐसा समझाने के लिए समझाए भले, परंतु ये जीव के गुण है। और सब ये वीर्यादि है ना, उसमें दान लाभ भोग उपभोग वीर्य वीर्यादि ये पांच है। तो ये अंतराय के इसमें जो बाधा वाले कर्म है वो अंतराय कर्म है। तो लाभांतराय दानांतराय भोगांतराय वगैरह हम कहते हैं उसको, यानी जीव में जो स्वयं की जो पर्याय स्वभाव रूप प्रकट होनी है। अभी ये जो क्षायिक है, क्षायिक दान आदि प्रकट नहीं होते हैं, तो उसमें बाधा लाने वाला कर्म वो अंतराय कर्म है। क्योंकि पर में तो कोई बाधा ला ही नहीं सकता है ना, परंतु हम ऐसा समझाते कि दूसरों को दान देना है परंतु उसमें बाधा आ गई। अब ये समझाने की चीज है, क्योंकि वो लौकिक भाषा में हम समझाएंगे उसको।
भोग और उपभोग किस तरह से लगते
हैं? अभी भोग अनंत ज्ञान उपभोग लगता है। हाँ, उपभोग कैसा लगता है?
उपभोग तो अपने अपने हर पर्याय में हर समय केवल ज्ञान का
उपभोग। हाँ,
उपभोग कर रहा है।
और हर समय नया नया सुख, पुराना बासा सुख नहीं है, नया नया सुख वो भोग होगा। यानी हमें अपने स्वभाव का लाभ हुआ वो दिखता ही नहीं ना, वैसे ही तो है। हमें तो बाहर ही बाहर लाभ दिखता है। आप हम अनंत गुण के धनी है ऐसा कहेंगे तो कुछ नहीं, अरे वो करोड़पति है अब्जोपति है कहेंगे तो हाँ महिमा आती है। महिमा तो हमें पर की आती है अनादि से, और लाभ तो हमने पर के संयोग से ही लाभ माना है। पर हम अपने आप में परिपूर्ण है उसको जानो, लाभ ही लाभ है। अब ये चौथा क्षायोपशमिक भाव समझाएंगे। क्षायोपशमिक भाव के हमें विकल्प तो मालूम है, अभी स्थान बताएंगे यहाँ कितने विकल्प है, 18। हाँ, क्षायोपशमिक भाव स्थान की अपेक्षा 7 प्रकार और विकल्प की अपेक्षा 18 प्रकार का है। गाथा पढ़ेंगे हम ऊपर, ये नौ नंबर यहाँ नहीं डाला क्या नीचे? हाँ डालेंगे अर्थ के बाद। हाँ, नानन्नानं चतः दंसनलद्धीतहेव सम्मत्तं चारित्तं देशजमो सत्तेव यहोतिठाणायिं। ज्ञान अज्ञान, ये ज्ञान अज्ञान क्या है? हाँ, सुज्ञान और कुज्ञान। तो सुज्ञान कितने प्रकार के है? ये क्षौपशमिक भाव चल रहे अभी, क्षायिक ज्ञान को यह नहीं लेना है। हाँ, मति शुद्ध अवधि मनपरी है, ये सु लगाना है उसके पीछे ये। और अज्ञान कितने?
तीन
अज्ञान। दर्शन
तीन
लेना, केवल दर्शन को छोड़कर। लब्धि, हाँ, सम्यक्त्व कौन से दो? हाँ हाँ, क्षायोपशमिक एक ही लेना। चारित्र क्षायोपशमिक और देश संयम। देखो फिर पढ़ती हूँ, ज्ञान अज्ञान दर्शन लब्धि सम्यक्त्व चारित्र और देश संयम, ये 7 स्थान क्षायोपशमिक भाव में होते हैं। अभी 18 याद करना आसान है कि ये 7 आसान है ना? क्षायोपशमिक भाव उनमें मति शुद्ध अवधि और मनपर्याय के भेद से ज्ञान 4 प्रकार का है। अब ये हर एक के भेद बता रहे, विकल्प सब 18 गिनाने ना। शंका, यहाँ पर ज्ञानों में केवल ज्ञान का ग्रहण क्यों नहीं किया गया? नहीं, क्योंकि वह क्षायिक भाव है। यह हम क्षायोपशमिक भाव गिना रहे। कुमति कुश्रुत और विभंग के भेद से अज्ञान 3 प्रकार का है। चक्षु अचक्षु और अवधि के भेद से दर्शन तीन प्रकार का है, यानी चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। यहाँ पर दर्शनों में केवल दर्शन का ग्रहण नहीं किया गया है, क्योंकि वह अपने विरोधी कर्म के क्षय से उत्पन्न होता है। केवल दर्शनावरण यानी सभी दर्शनावरण के जो क्षय है, तभी वो केवल दर्शन उत्पन्न होगा। दानादिक के भेद से लब्धि पांच प्रकार की है। यह लब्धि हमने क्षायिक भाव में भी देखी थी, वहां तो कर्मों का क्षय से वे लब्धि होगी, क्षायिक लब्धि होगी। और क्षोभशम भाव में लेते हैं तो वहां उन कर्मों के क्षोभशम से यानी अंतराय कर्म के क्षोभशम से यहाँ क्षोभशम लब्धि होगी। यानी लब्धि का नाम दोनों ही दे, जैसे ज्ञान का भी वहां नाम लिया था, क्षायिक ज्ञान भी कहा था और यहाँ क्षोभशमिक ज्ञान कहा, वैसे लब्धि में भी लेना। सम्यक्त्व एक प्रकार का है, क्योंकि इस भाव में वेदक सम्यक्त्व को छोड़कर अन्य सम्यक्त्वों का अभाव है। तो सम्यक्त्व तीन प्रकार के हमने देखे थे, तो वेदक सम्यक्त्व कौन सा भाव है? क्षोभशमिक। और उपशम सम्यक्त्व? औपशमिक। और क्षायिक सम्यक्त्व? क्षायिक भाव। चारित्र एक विकल्प रूप ही है, क्योंकि यहाँ पर सामायिक छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि संयम की विवक्षा का अभाव है। उसकी विवक्षा नहीं करना है, वो संयम कौन से प्रकार का है उसकी बात नहीं है यहाँ, यह तो क्षोभशमिक चारित्र इतना ही लेना उसमें। हाँ, परंतु उसके भेद यहाँ नहीं करने। संयमासंयम एक भेद रूप है, इस प्रकार मिलकर ये सब विकल्प 18 होते हैं। ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, लब्धि, सम्यक्त्व, चारित्र और देश संयम। जैसे हमने क्षायिक भाव घाती कर्मों पर घटाए थे ना, औपशमिक भाव भी, वैसे क्षोभशमिक भाव भी कहाँ पर घटित हो रहे हैं? ये घाती कर्मों पर ही उसके ही विचार करना, ज्ञानावरण के बाबत में वो चार यानी ज्ञान अज्ञान वहां पर लगाना, और फिर दर्शन भी, लब्धि भी वो अंतराय कर्म के बारे में, और मोहनीय के संबंध में ये तीन हो गए, क्षोभशमिक सम्यक्त्व, क्षोभशमिक चारित्र और संयमासंयम। क्योंकि ये तो जीव के जो भाव है उसमें तो ये तो आघाती कर्मों के उदय में तो वो सब अन्य अन्य भाव हो जाते हैं। हाँ, वो औदयिक में खाली वो गति वाला लेते, पर वहां भी मोह कर्म की मुख्यता से वो बात समझनी है। वहां लेते तो है मैं गति औदयिक भाव है, वो अन्य जो असिद्धत्व भी उससे ही सिद्ध हो जाता है, जब तक आघाती है तब तक वो असिद्धत्व भाव सिद्ध हो जाएगा यानी प्रूव हो जाएगा, परंतु ये जो भाव है वो मुख्यतः इसी में घटते हैं। अब पारिणामिक भाव पांचवा। पारिणामिक भाव भव्य अभव्य और जीवत्व के भेद से तीन प्रकार का है, यानी भव्यत्व पारिणामिक, अभव्यत्व पारिणामिक और जीवत्व पारिणामिक। ऊपर गाथा है 10 नंबर की। एयम ठाणम तिन्निविय व्यपातः पारिणामिये होन्ति भौवा भौवा जीवा अत्तवणदो चेव बोधौवा। पारिणामिक भाव में स्थान एक, एयम ठाणम लिखा है ना, और तिन्नी व्यप्पा यानी तीन विकल्प। पारिणामिक भाव में स्थान एक तथा भव्य अभव्य और जीवत्व के भेद से तीन भेद होते हैं। भेद कहो या विकल्प कहो एक ही बात है। ये विकल्प आत्मा के असाधारण भाव होने से ग्रहण किए गए जानना चाहिए। ये जो पांच भाव है उसको आत्मा के असाधारण भाव कहे, अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते हैं ऐसे असाधारण भाव। इन पूर्वोक्त भावों के विकल्पों को बतलाने वाली यह संग्रह गाथा है, यानी हर एक भाव के विकल्प कितने हैं उसको यहाँ बताएंगे। अभी तक हमने गाथाएं पढ़ी थी, वहां स्थान और विकल्प, स्थान और विकल्प ऐसा बताए थे। एगिवीस अठ तहणव अठारस तिन्नि चैव बोद्धौवा ओदय्यादि भावा वियप्पदो अणुपूविये। देखो सेकंड लाइन, औदयिकादि भावा विकल्पता अनुपूर्व यानी क्रम से अनुक्रम से कितने हैं ऊपर लिखा 21 यानी औदयिक वाले को 21 फिर 8 तह 9 18 से 3 21 नहीं 8 है वे औपशमिक के 8 लिए थे ना हमने विकल्प जिस क्रम से अभी हमने देखा था पहले औदयिक को देखा फिर औपशमिक के देखा फिर क्षायिक के 9 देखे क्षाउपशमिक के 18 देखे और पारिणामिक के 3 देखे इसलिए आणुपूर्वीय ने अनुक्रम से लिखा उन्होंने नीचे उसका अर्थ करते औदयिक आदि 5 भाव उत्तर भेदों की अपेक्षा उत्तर भेद यानी उसके सब डिविजन्स और आगे के भेद पेटा भेद कहते ना इसमें भेद के भी भेद अनुपूर्वी से यानी अनुक्रम से 21 8 9 18 और 3 भेद वाले हैं ऐसा जानना चाहिए ये बातें पहले बताई थी परंतु एक ही गाथा में फिर उसको दोहराया है अथवा सान्निपतिक की अपेक्षा सान्निपातिक चाहिए सन्निपात से सान्निपातिक शब्द शुरू हुआ सान्निपातिक अथवा सान्निपातिक की अपेक्षा भावों के 36 भंग होते हैं तो शंकाकार पूछता है उन्हें मालूम है हमें कौन सी शंका आने वाली है तो सान्निपातिक यह कौन सी संज्ञा है यानी सान्निपातिक का अर्थ क्या होता है उसका समाधान एक ही गुणस्थान या जीव समास में जो बहुत से भाव आकर एकत्रित होते हैं उन भावों की सान्निपातिक ऐसी संज्ञा है जैसे एक मिथ्यात्व गुणस्थान है तो उस मिथ्यात्व गुणस्थान में कौन कौन से भाव हो गए औपशमिक के कितने हो गए नहीं हो गए और क्षायिक के वो भी नहीं हो गए तो कौन कौन से हो गए औदयिक हो गए क्षामिक क्षौपशमिक हो गए और पारिणामिक हो गए तो क्षौपशमिक में वो ज्ञान वाले हो गए कि नहीं हो गए वो अज्ञान में हो जाएगा अज्ञान हो गया अब ये दर्शन में वो अवधि दर्शन नहीं होगा चक्षु अचक्षु हो सकता है यानी वहां जो पॉसिबल है उसको कहेंगे अब उनके कॉम्बिनेशंस में भाव बताएंगे तो क्या कहते हैं एक ही गुणस्थान या जीव समास में बहुत से भाव आकर एकत्रित होते उन भावों की सान्यपातिक ऐसी संज्ञा है उसके 36 भंग बताए उन्होंने अब ऐसे भी इनकी टोटल कितनी हो गई थी 21 और 8 29 और 9 38 और 18 और 3 ये 53 भाव जो हम परंतु 53 तो एक साथ नहीं होते उसके जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस होंगे किसी को एक भाव किसी को दो दो का संयोग तीन का संयोग वो बातें बताएंगे अभी 59 हाँ वो चारित्र ज़्यादा लिया ना हाँ चारित्र के ज्यादा विकल्प है हमें हमेशा औपशमिक दो भाव लेते हैं यहाँ चारित्र के 7 भाव ने औपशमिक के 8 भाव गिना है इसलिए वो ज्यादा हो गए यानी कॉम्बिनेशन वाले एक से अधिक भावों को एक साथ कहेंगे उसको सान्निपातिक कहते हैं कॉम्बिनेशन अब उक्त भावों के 1, 2, 3, 4 और 5 भावों के संयोग से होने वाले भंग कहे जाते हैं यानी हर एक का एक एक ले लेंगे तो पांच संयोगी यानी एक संयोगी हो जाने यानी संयोग नहीं है मगर एक वाला प्रत्येक भंग कहते उसको दो दो के कॉम्बिनेशन वाला द्विसंयोगी भंग कहेंगे तीन तीन के कॉम्बिनेशन वाला तीन संयोगी भंग कहेंगे देखो अब उक्त भावों के 1, 2, 3, 4 और 5 भावों के संयोग से होने वाले भंग कहे जाते हैं उनमें से एक संयोगी भंग इस प्रकार है हाँ किसको होगा कौन से आपका प्रश्न है पांचों भाव किसी एक जीव के हो सकते हैं कि नहीं? हाँ, बारहवें गुणस्थान में कौन सा औपशमिक भाव है? हाँ नहीं है, अच्छा। हाँ कौन से ग्यारहवें गुणस्थान में? हाँ, और कौन सा होना चाहिए? वो द्वितीय ऑप्शन वाले, वहाँ क्षायिक भाव कैसे घटित करेंगे? हाँ, क्षायिक सम्यक्तों के साथ उपशम श्रेणी वाला चढ़ने वाला। द्वितीय ऑप्शन मत कहो, द्वितीय ऑप्शन तो दर्शन मोहनी का द्वितीय ऑप्शन होता है, और यहाँ उपशम तो चारित्र में हो रहा है। क्षायिक तो सम्यक्त है और उपशम तो चारित्र होगा उसका, क्या लगता है? क्षायिक सम्यक्तों के साथ उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, उपशम चारित्र होगा, क्षोपशम भाव होगा कि नहीं होगा? ज्ञान दर्शन जो कुछ है वो तो क्षोपशम भाव भी है, और फिर पारिणामिक तो सबको है, औदयिक भी है। अभी उनका ज्ञान कौन सा है? छद्मस्थों का लब्धि है, दर्शन है, ज्ञान है, ख्याल है? हाँ, वो क्षौपशमिक भाव है उनका। तो सभी भाव घटित हो गए किसमें? क्षायिक सम्यक्तों के साथ उपशम श्रेणी चढ़ने वाले के ग्यारहवें गुणस्थान में। बिल्कुल बता सकते, बारहवें में भी बता सकते हैं। क्षौपशम ज्ञान है कि नहीं? ज्ञान दर्शन बारहवें तक छद्मस्थों का जो ज्ञान दर्शन है वो तो क्षौपशम भाव है, अनादि से ही बारहवें गुणस्थान तक रहेगा वो। ये दानादि पांच भी भाव वो क्षोपशम भाव है उनके। जब केवल ज्ञान केवल दर्शन होता है तो ये क्षायिक अन्य भी भाव सभी एक साथ प्रकट हो जाएंगे उनके। जो पहली बार सुनते हैं तो ऐसा अंदर से हड़बड़ाहट हो जाती है कि अभी हम ऐसा मानते थे और अभी जीव का वो गुण मानना है।
देखो यहाँ सिंपल लॉजिक है, हम तो भाव किसके देख रहे हैं, कौन से द्रव्य के देख रहे हैं? ये जो अभी जीव द्रव्य के भाव, भाव यानी उसके गुणों की पर्यायी है ना, भाव यानी पर्यायी है ना, तो पर्याय किसकी होगी? गुण की होगी। तो ये दान नामक गुण आत्मा में है, इसलिए वो दान का भाव वहाँ है। अब आपने कुछ,
अब ये दान का भाव कौन से दान का? देखो देखो देखो, दान देना है तो परद्रव्य की क्रिया होगी, और दान देने का भाव क्या है?
शुभ भाव है,
शुभ भाव है, चारित्र गुण के विभाव विभाव परिणमन है, और उसको आप क्षायिक दान कह सकेंगे या इवन क्षौपशमिक दान भी कह सकेंगे?
देखो इस बार पर हम जितना सोचे उतना हम तत्व में अधिक स्थिर होते हैं, तत्व का निर्णय होता है कि हमने आज तक ऐसा सुना ही नहीं है। ये तो अपनी स्वयं का अपराध है, दूसरों किसी का नहीं, कि हमने आज तक नहीं जाना क्योंकि तेरी योग्यता ऐसी थी बस। अब इसीलिए तो हम रोज स्वाध्याय करना चाहिए क्योंकि रोज एक नई बात आती है। अब ये बात देखो, ग्यारहवें गुणस्थान में पांचों ही भाव होते हैं, भले भले लोग नहीं जानते हैं, यानी पांचों ही ये भाव किसी जीव के एक साथ हो सकते हैं क्या? ऐसा जब प्रश्न उठता है तो हम उसके ऊपर सोचना चाहिए, और जब ये इस निर्णय पर हम आ सकते हैं, ये जब भी वक्त मिलता है, अब ये पांच भाव जब आपको ख्याल में आएंगे तो उसके बारे में सोचते रहना कि ये गुणस्थान में या ये अवस्था में कितने भाव होंगे, कैसे कैसे होंगे, लिख के रखना। उसमें अपना कॉन्सेंट्रेशन अधिक होता है, अपना उपयोग भी तत्व का निर्णय करने में लगता है, और ऐसे ही जीव को सम्यक तो हो सकता है। क्या हमने पहले से ये माना था तो हम ऐसा ही मानेंगे बोलेगा तो कैसा चलेगा? जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है वही मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा क्योंकि वही सत्य बात है ना, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है उधर। तो समझने के लिए तो स्वाध्याय करना चाहिए सर,
बिना समझ के कोई नहीं माने, वो मानना खाली खोटा मानना होगा।
अच्छी बात है।
देखो ऐसे अंदर चोट पहुंचती है, अरे दान इसमें ये तो हमें कभी विचार ही नहीं किया था। जैसे वही प्रश्न आपके मन में अभी भी घूम रहा है वो दान के संबंध में।
नहीं नहीं, क्योंकि अभी तक हमने ऐसा ही सुना है और माना है कि दान देने से धर्म होता है, तो हाँ, क्योंकि आपको पता नहीं था। अभी जीव में अस्तित्व नाम का गुण है, ये लघु सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ने के पहले आप जानते थे क्या? ख्याल में है ना? तो वो इसीलिए तो कह रहे कि जिनेन्द्र भगवान ने जो बात बताई, अभी आत्मा में उत्पाद वे ध्रुवत्व नाम का भी एक गुण है, ये सारी बातें हम पहले नहीं जानते थे। जानोगे उसमें क्या है? देखो, किसी भी बात की कंसिस्टेंसी जिसको हम कहते हैं, सातत्य रहना ही चाहिए। अभी हम मनोज भाई से पूछते, बीच में 8 दिन 15 दिन नहीं आए तो फिर गाड़ी रेल मतलब लाइन पे आने में टाइम जाता है, और फिर उसमें क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। उसके लिए अधिक पुरुषार्थ चाहिए, और हम रोजाना आते तो फिर बराबर गाड़ी चलती है, और आखिर आखिर में तो हमारी ऐसी आदत सी हो जाती है, वो जैसा बैल होता है ना, बैल पहले वो गाड़ी के नीचे आने में तकलीफ करता है, फिर बाद में वो ऐसा खाली बैलगाड़ी का ये नीचे किया तो जाके गर्दन दे देता है। ऐसा अपना होना चाहिए, हाँ, स्वाध्याय के बाबत में। और सिर्फ स्वाध्याय नहीं करे, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा सोचे भी, वही तो कार्यकारी है। यहाँ सुना बाहर गए तो फिर और अलग बात, ऐसा नहीं होवे।
एक देहात में कोई रहते, उनका फोन आया था, कल आप नहीं थे, तो कहते मैं आपकी कैसेटे रोज 6 घंटा पढ़ता सुनता हूँ, सुबह 3:30 बजे उठकर चालू करता है। वो धवला भी उसने मंगाई है, आगो काले है, कोई रिसोर्ट नाम का गांव है वहां से। कहते कि अभी तक मैं ये कुछ मालूम ही नहीं था, आपने तो हमारी जीवन ही बदल डाला, उसने खाली कैसेटे सुनी है। देखो, आपका प्रश्न है पारिणामिक भाव और परम पारिणामिक भाव में क्या अंतर है। तो पारिणामिक भाव में हमने ये तीनों ही भाव लिए, भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व। हमने भव्यत्व देखा कि वो तो सिद्ध होने के बाद वो नहीं रहता है ना? हाँ, तो परम पारिणामिक में जीवत्व, परम पारिणामिक जिसके आश्रय से धर्म की प्राप्ति होती है, हम कहते ना, वो जिसका आश्रय करना है, जिसका लक्ष्य करना है, वो परम पारिणामिक भाव है। जीव का अपना स्वभाव भाव, क्योंकि भव्यत्व का तो लक्ष्य नहीं करना है आपको। हाँ, जीवत्व तो सब में है, अभव्यों में भी है और भव्यों में भी है, इसीलिए उसको परम पारिणामिक भाव कहा है।
यहाँ पर दूसरी भी एक अपेक्षा लगती है कि प्रत्येक द्रव्य में स्वभाव भाव है तो प्रत्येक द्रव्य में पारिणामिक भाव है, एक बात। और हम जीव तो अनंत है, प्रत्येक में पारिणामिक भाव है, तो मेरे लिए मेरा पारिणामिक भाव परम पारिणामिक भाव है, क्योंकि मैं आपके पारिणामिक भाव का आश्रय लूं तो मुझे राग होगा, यानी जिनेन्द्र भगवान के कहो, ख्याल में है ना? इसलिए मैं अगर मेरे स्वभाव का अवलंबन लूंगा तो उस स्वभाव को परम पारिणामिक कहेंगे। उसके लिए उसका परम पारिणामिक भाव ही है, पर वो नहीं लेता है ना, उसकी कैपेसिटी नहीं ना, मतलब योग्यता नहीं है वैसी, उसके भाव को भी परम पारिणामिक भाव कहेंगे, क्योंकि उसके लिए वो परम पारिणामिक है, लेकिन उसने माना किधर है कि मैं जीव हूं, यानी ज्ञान स्वरूप जीव हूं, जीव इन द सेंस, वो तो अन्य अन्य बातों में अटका हुआ है ना, इसीलिए तो वो सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं है, मोक्ष का अधिकारी नहीं है। अनेक अपेक्षा से ऐसा हम बता सकते हैं, जहां जो योग्य होगा वो लेना चाहिए।
देखो, ये सान्निपातिक है ना, उनके कॉम्बिनेशन के भाव हो गए। जैसे 5 है हमारे पास, ABCDE, तो हर एक को एक एक बार ही हम ले लेंगे तो 5 वो उसके भंग में, यानी प्रत्येक भंग 5 हो जाएंगे। अब दो दो के कॉम्बिनेशन लेना, AB, एक सिंगल को लेना उसको कहते प्रत्येक भंग, और ये एक भंग। द्विसंयोगी है ना, दो दो का संयोग, ABAC ADAE, ऐसा वो द्विसंयोगी भंग हो जाएंगे। वो कितने होते हैं? फिर तीन तीन के संयोग करेंगे, ABC BCE आदि आदि, उसमें जो कुछ पॉसिबिलिटीज है। तो ऐसे भंग कितने होंगे और उनकी सबकी टोटल कितनी होगी, उसकी बात यहाँ बताने जा रहे हैं। अब उक्त भावों के ये हमने ज्ञान मार्गणा में देखे थे, अपुनरुक्त अक्षर 64 है, व्यंजन और स्वर और ये सब मिलकर, तो हर एक को एक बार एक एक को लेना तो 64 उसके ये हो जाएगी भंग, प्रत्येक भंग 64 हो जाएगी, दो 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 के कॉम्बिनेशन लेना, इस तरह से वहाँ बताए हैं। और सब टोटल कितनी हुई थी उसकी, सबकी टोटल करना बाद में, एक संयोगी, दो संयोगी, तीन संयोगी, चार संयोगी, और फिर 64 संयोगी वाला एक भंग हो जाएगा, उस सबकी टोटल करनी, याद है? हाँ, 31 - 1 कैसे निकालना? तो हमारे पास 64 है, तो 64 बार दो दो संख्या लिखना, आपस में गुणा करना, उसमें से एक माइनस करना, तो भंग कितने हो जाएंगे? हाँ, वो इकट्ठी है, इकट्ठी माइनस एक हो जाता है। हाँ, अबे पांच का गिनो आप, पांच बार दो दो लिखो, करो। बेदुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह दुनी 32। हाँ, 32 में से एक माइनस करना इस तरह से। अब देखो यहाँ पे बताएंगे, अब उक्त भावों के एक दो तीन चार और पांच भावों के संयोग से होने वाले भंग कहे जाते हैं। उनमें से एक संयोगी भंग इस प्रकार है। अब उनके उनके प्रत्येक के अपने अपने साथ ऐसा भी ले लेना है। अभी औदयिक भाव है तो औदयिक का औदयिक के साथ ऐसे भी वहाँ भंग और बढ़ाएंगे तो वो बढ़ जाएंगे। खाली पर के साथ संयोग ऐसा नहीं, अपने अपने में भी एक औदयिक भाव और दूसरा औदयिक भाव उसके साथ, हाँ, तो ज्यादा हो जाएंगे इस तरह से। हाँ, उनमें से एक संयोगी भंग इस प्रकार है। औदयिक औदयिक भाव, जैसे यह जीव मिथ्या दृष्टि और असंयत है, ये दो औदयिक भाव एक साथ है तो यह औदयिक औदयिक भंग हो गया। दर्शन मोहनी कर्म के उदय से मिथ्या दृष्टि यह भाव उत्पन्न होता है और संयम घाती कर्मों के उदय से असंयत यह भाव उत्पन्न होता है। इसी क्रम से सभी विकल्पों की प्ररूपणा करनी चाहिए। इस विषय में सूत्र गाथा है, अभी कैसे बढ़ेंगे वो उसकी बात करते हैं, उसके ऊपर सूत्र गाथा हम पढ़ते हैं। एकोत्तर पद वृद्धो रूपाद्यैर्भाजितं च पदवृद्धे गच्छ संपात फलम् समाहतः सन्निपात फलम्। एक एक उत्तर पद से बढ़ते हुए गच्छ को रूप आदि पद प्रमाण, रूप यानी एक, रूप आदि पद प्रमाण बढ़ाई हुई राशि से भाजित करें और परस्पर गुणा करें, तब संपात फल अर्थात एक संयोगी द्विसंयोगी आदि भंगों का प्रमाण आता है। ये कितने भंग हो जाते हैं, एक संयोगी भंग कितने हो गए, द्विसंयोगी भंग कितने हो गए, उसकी संख्या मिलेगी। तथा इन एक दो तीन आदि भंगों को जोड़ देने पर सन्निपात फल अर्थात सान्निपातिक भंग प्राप्त हो जाते हैं। यानी सिंगल सिंगल वाले एक संयोगी भंग कितने हो गए, द्विसंयोगी कितने हो गए, उसकी फिर टोटल करेंगे सबकी मिलकर, उसको कहेंगे सान्निपातिक भंग। इस करण गाथा का विशेष अर्थ और भंग निकालने का प्रकार समझने के लिए देखो भाग 4 पृष्ठ 143 का विशेष अर्थ, ये देख के आना, फिर इसको फिर कल और समझेंगे चौथे पुस्तक में, क्योंकि चौथी पुस्तक तो घर में है, भले पांचवी यहाँ रखेंगे, हा? तो देखेंगे तो ख्याल में आ जाएगा। हम कल फिर उसको देखेंगे, ये सिंगल संयोगी दो संयोगी कैसे निकालना, उसमें आता है ना वो संकलन धन करते हैं, संकलन उसका सूत्र है, कैसे निकालना उसका सूत्र आता है। तो एक बार संकलन धन करेंगे या फिर जितना टोटल गच्छा में, मान लेते हमारे पाँच है भाव, तो द्विसंयोगी कितना है, तो पांच में से एक कम करना, फिर उसका एक बार संकलन धन करना, आदि आदि बातें उसकी होगी। तो उसका तो पूरा गणित है, अभी तो 10 ही मिनट है, हम यहाँ पढ़ते हैं, फिर कल फिर उसको ले लेंगे, फिर दोबारा, पहले यहाँ हो चुका अपना, फिर भी ले लेंगे उसको। इस उक्त प्रकार के भाव भावा के हुए भावों के अनुगम को भावस्य भावों के इस उक्त प्रकार के भावों के अनुगम को भावानुगम कहते हैं। ये अपना विषय चल रहा है भावानुगम। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का होता है, ओघ से अर्थात संग्रह की अपेक्षा और आदेश से अर्थात असंग्रह की अपेक्षा। इस प्रकार निर्देश दो प्रकार का होता है क्योंकि तीसरे निर्देश का होना संभव नहीं है। अब तक हम ये ऐसे ही बताए ना, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश, वैसे भावों में भी ओघ यानी सामान्य और विशेष ऐसी बात यहाँ होगी, यानी संग्रह की अपेक्षा नहीं इकट्ठा और उसके भेद कर करके वो आदेश की अपेक्षा बताएंगे, असंग्रह कहा उसको। ओघ निर्देश की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि यह कौन सा भाव है? ऊपर सूत्र पढ़ेंगे पहले। ओघेण मिथ्या दृष्टि को भावो ओदयो भावो। ओघ निर्देश की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि यह कौन सा भाव है? औदयिक भाव है। जैसा उद्देश्य होता है उसी प्रकार निर्देश होता है। इस न्याय के ज्ञापनार्थ, ज्ञापनार्थ है बताने के लिए, ज्ञापन करने के लिए सूत्र में ओघ ऐसा चाहिए, ऐसा हुआ ऐसा पद कहा, ओघ ऐसा पद कहा, यानी हमारी क्या अपेक्षा है, किसकी बात चल रही है? ओघ का निर्देश है पहले, ये तो पहले की बात है ना, ओघ से है या आदेश से है वो पहले बता देते हैं। अर्थ मिथ्या दृष्टि ये क्या है, मिथ्यात्व ये पारिणामिक भाव है क्या नहीं है? पारिणामिक भाव होता तो जीव के साथ से कभी जुदा होता ही नहीं। पारिणामिक भाव तो अनादि अनंत जीव का स्वभाव भाव है। तो किसी की भी अपेक्षा मिथ्यात्व ये पारिणामिक भाव नहीं होता, वो तो जीव का विभाव भाव है। भले वो किसी जीव के अनादि अनंत रहे प्रवाह की अपेक्षा, फिर भी वो तो औदयिक भाव ही है क्योंकि वहां दर्शन मोहिनी के उदय की अपेक्षा आती ही है।
देखो अगर हम मिथ्यात्व भाव पारिणामिक भाव मानेंगे तो कुछ जीवों का भाव स्वभाव मिथ्यात्व ही है और कुछ जीवों का अलग है, ऐसा होगा ना? तो जीव ऐसे सबके स्वभाव भाव एक ही होंगे, हरेक के अलग अलग नहीं होंगे? जैसे कि हिंदुस्तान का अग्नि गर्म है और नॉर्थ पोल का ठंडा है, ऐसा मानना पड़ेगा ना। अग्नि का स्वभाव तो उष्ण नहीं होगा हर जगह।
अर्थ अभिधान, अभिधान यानी शब्द और प्रत्यय यानी ज्ञान। अर्थ शब्द और ज्ञान ये तुल्य नाम वाले होते हैं, यानी समान नाम वाले होते हैं। इस न्याय से इति कारण परक अर्थात जिसके पश्चात हेतुवाचक इति शब्द आया है, ऐसा मिथ्या दृष्टि यह शब्द मिथ्यात्व के भाव को कहता है। ऊपर है ना मिथ्या दृष्टि को भावो, मिथ्या दृष्टि यह कौन सा भाव है, ऐसा पता है ना। व्याकरण की दृष्टि से एक एक शब्द का यहाँ अर्थ कर रहे हैं। पांचों भावों में से यह कौन भाव है, ऐसा पूछने पर यह औदयिक भाव है। इस प्रकार तीर्थंकर के मुख से दिव्य ध्वनि निकली है। को भावो प्रश्न क्यों पूछा, डायरेक्ट बताते कि मिथ्यात्व औदयिक भाव है, तो को भावो कहने से ये कौन सा भाव है ऐसा प्रश्न पूछने पर तीर्थंकरों के दिव्य ध्वनि में आया ये औदयिक भाव है। उन्होंने ऐसा नहीं बताया कि ये पारिणामिक भाव है। अच्छा अच्छा, आप मिथ्या तो गुणस्थान में कौन कौन से भाव है उसकी बात चल रही है। हाँ, मिथ्या दृष्टि यह कौन सा भाव है, हाँ ये मिथ्या तो गुणस्थान की बात नहीं चल रही है। मिथ्या तो इटसेल्फ क्या है, औदयिक भाव है। पांच भाव में से मिथ्या दृष्टि कहो या मिथ्यात्व कहो, ये कौन सा भाव है, ये गुणस्थान वाले की बात नहीं चल रही है, भाव की बात चल रही है। भाव का नाम है मिथ्या दृष्टि, यह भाव का नाम है। यह कौन भाव है, अर्थात पांचों भाव में से यह कौन सा भाव है, यह तात्पर्य होता है। उदय से जो हो उसे औदय कहते हैं। उदय शब्द से यह तैयार हुआ ना, तो जो उदय से होता है उसको औदय कहते हैं। मिथ्यात्व कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाला मिथ्यात्व परिणाम कर्मोदय जनित है, अतएव औदयिक है। यह सब निमित्त की भाषा चलेगी। कहेंगे कर्मोदय के कारण उत्पन्न हुआ है, कर्मोदय जनित, जनित यानी उससे जन्मा हुआ, उससे जनित यानी उससे उत्पन्न हुआ। तो यह मिथ्यात्व कर्म का उदय है और उससे उत्पन्न होने वाला जो जीव का मिथ्यात्व परिणाम है उस परिणाम को यहाँ औदयिक भाव कहते हैं। औदयिक शब्द ही उदय से तैयार हुआ। शंका, ये आपकी शंका यहाँ है, मिथ्या दृष्टि के अन्य भी भाव होते हैं। उन ज्ञान दर्शन गति लिंग कषाय भव्यत्व अभव्यत्व आदि भावों के अभाव मानने पर संसारी जीव के अभाव का प्रसंग प्राप्त होता है। कहा भी है करके स्वयं ही शंकाकारी प्रस्तुत कर रहेगा था। दोनों हम पढ़ेंगे एक साथ। मिच्छते दस भंगा आसादन मिस्से विबोधवा तिगुणाते चदुहीना अविरद सम्मस्से मेव देशे खो वसमिये विरदे खव गाण ऊणवी संतु ओ सामगे सुपुद पुद पणती संभाव दो भंगा। प्रत्येक गुणस्थान के भंग बता दिया उन्होंने, लिखा ना, मिच्छते दस भंगा, मिथ्यात्व में दस भंग, आसादनम इससे भी बोध हुआ। देखो यह नीचे उसका अर्थ किया है, मिथ्यात्व गुणस्थान में उक्त भावों संबंधी दस भंग होते हैं। ये सब बातें डिटेल में आएगी अभी आगे। सासादन और मिश्र गुणस्थान में भी इसी प्रकार दस भंग जानना चाहिए। मिससे भी बोध हुआ। अविरत सम्य दृष्टि गुणस्थान में वे ही भंग त्रिगुणित और चतुरहीन दस है, उसको तिगुण करना यानी 30 करना और उसमें 4 माइनस करना 26 होते हैं। ऊपर लिखा तिगुणा दे चतुहीना। इसी प्रकार ये 26 भंग क्षायोपशमिक देश विरत प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत गुणस्थान में भी होते हैं। शायिक वाला नहीं लेना, शायुपशमिक वाला नहीं। वो सामग ऐसे लिखा ना, पुद पुद पणिति संभाव दो भंग, क्षपक श्रेणी वाले चारों क्षपकों के 19 भंग होते हैं। अगले पेज पर लिखा, उपशम श्रेणी वाले चारों उपशामकों में पृथक 35 भंग भाव की अपेक्षा होते हैं। अब इनका विशेषार्थ कहेंगे तो हमें वो कैसे आए, ये 10 भंग कैसे है, पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान में 10 भंग कैसे है, उसका विशेषार्थ बता रहे। पूर्व में बतलाए गए भंगों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। शंकाकार ने प्रस्तुत किए हैं गाथा, शंकाकार ने शास्त्र की ही गाथाएं प्रस्तुत की है। और उसका प्रश्न क्या था कि मिथ्या दृष्टि जो गुणस्थान है उसमें तो अभी हमने देखा ये 10 भंग होते हैं और आपने वो उत्तर दिया था मिथ्या दृष्टि यह औदयिक भाव है। अभी उसकी शंका पूरी कहाँ हुई? उसने तो ऐसा कहा है कि उसको यह अन्य अगर भाव वहाँ नहीं मानेंगे तो संसार का यह भाव मानना पड़ेगा उसको। हाँ, ऐसा उसका कहना है, तो उसका समाधान आगे आ जाएगा। यहाँ मिथ्या दृष्टि को अन्य भाव नहीं होते ऐसा कहाँ कहा है? मिथ्या दृष्टि है कौन सा भाव है इतना पूछा है। जैसे हम पूछेंगे केवल ज्ञान ये कौन सा भाव है, हाँ क्षायिक भाव, तो क्या उन्हें पारिणामिक भाव नहीं होता? तो क्या उन्हें अकेला एक क्षायिक ज्ञान ही होता है कि अन्य भी क्षायिक भाव है उनके? तो प्रश्न कौन सा पूछा था उससे अनुसार उत्तर आएगा ना उसका। अन्य भाव नहीं है उसकी अपेक्षा नहीं है, तो अभी उसको शंकाकार है, वो पढ़ा लिखा है, इसलिए लंबी चौड़ी अभी गाथा भी प्रस्तुत की उसने, तभी उसका अर्थ हम देखेंगे देखेंगे कल ही देखेंगे, अभी 10 बज गए, ये विशेषार्थ हम कल देखेंगे। और आपको वो गणित के भंग सीखना है तो जरा पढ़कर आना, वो भी देखेंगे आप चाहते तो। हाँ, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत होलो।